हवेली के मंदिर वाले बड़े कमरे में धीमी आवाज में भजन चल रहा था। घंटी की हल्की ध्वनि, अगरबत्ती की खुशबू और बाहर आंगन में पड़ती शाम की सुनहरी रोशनी, पूरा माहौल सच में कई दिनों बाद शांत लग रहा था। रत्ना देवी अपने बड़े लकड़ी वाले सोफे पर टिककर बैठी थी। हाथ में माला थी, चेहरे पर संतोष साफ दिख रहा था। उनके पास ही सुषमा देवी बैठी थी। दोनों के बीच अब पहले जैसी बेचैनी नहीं थी। रत्ना देवी ने लंबी सांस लेकर कहा, हवेली में सब कितना शांत और सुकून में हो गया है। सुषमा देवी ने तुरंत हामी भरी। हाँ, उन्होंने हल्की मुस्कान के साथ कहा, जब से वो अक्षरा यहाँ से गई है सब ठीक हो गया। उनकी आवाज़ में अब भी अक्षरा के लिए कड़वाहट थी। उसका सच सामने आ ही गया। मुझे पता था मेरा विशु कभी गलत नहीं हो सकता, उन्होंने गर्व से कहा, वो भी किसी लड़की के मामले में जो उसकी दोस्त रही हो। रत्ना देवी ने भी सिर हिलाया, हाँ देवी आप सही थीं। उनके चेहरे पर हल्का दुख उतर आया। मैंने तो उसे बहुत अच्छी लड़की समझा था, लेकिन वो तो मेरे ही बेटे को बदनाम करने पर उतर आई थी। सुषमा देवी ने भौहें सिकोड़ ली। ऐसी लड़कियां घर नहीं तोड़ती, पूरे खानदान की शांति खा जाती हैं। इतने में कमरे का पर्दा हटाकर मधु अंदर आई। हाथ में चाय की ट्रे थी। मालकिन चाय, उसने दोनों के सामने कप रखे, फिर अचानक नीचे बैठकर रत्ना देवी के पैर दबाने लगी। रत्ना देवी ने उसे देखा, क्या हुआ? मधु तुरंत मीठी आवाज में बोली, मालकिन अब सब ठीक हो गया है ना हवेली में, तो मैं सोच रही थी कुछ दिन घर हो आऊं, मेरी माँ ने मेरे लिए रिश्ता देखा है। सुषमा देवी ने तुरंत उत्सुकता से पूछा, अच्छा लड़का क्या करता है? मधु शर्माने का नाटक करने लगी। जी कपड़ों की दुकान है उनकी, रत्ना देवी ने सीधा जवाब दिया। नहीं, मधु का चेहरा उतर गया। मतलब अभी हवेली में बहुत काम है, तुम नहीं रहोगी तो दिक्कत होगी, मधु तुरंत बोली। अरे मालकिन हवेली में इतने नौकर हैं, मैं ना रहूं तो क्या फर्क पड़ेगा? लेकिन रत्ना देवी का चेहरा सख्त हो गया। फर्क पड़ता है, और मैंने कह दिया ना अभी कहीं नहीं जाना। मधु के चेहरे पर एक पल को अजीब सा भाव आया, जैसे उसे ये जवाब पसंद नहीं आया, लेकिन अगले ही सेकंड वो फिर नकली मुस्कान ले आई। जैसी आपकी मर्जी मालकिन, उसने फिर धीरे धीरे पैर दबाने शुरू कर दिए, लेकिन उसकी आंखों में कुछ और ही चल रहा था। सुषमा देवी ने चाय का घूंट लिया। वैसे भी अभी घर का माहौल ठीक हुआ है, ऐसे वक्त में भरोसे के लोग पास होने चाहिए। मधु ने नजरें झुका ली, लेकिन उसके होंठों पर बहुत हल्की रहस्यमयी मुस्कान आ गई। उधर दूसरी तरफ डीके के आलीशान बंगले में बिल्कुल अलग माहौल था। पूरा घर आधुनिक रोशनी से चमक रहा था। ऊपर के कमरे में अक्षरा शीशे के सामने खड़ी तैयार हो रही थी। ब्लैक सूट, हल्का मेकअप, चेहरे पर वही तेज और ठंडी अकड़। आज टेंडर खुलने वाला था और वो किसी भी हालत में कमजोर नहीं दिखना चाहती थी। उसने अपनी घड़ी पहनी, फाइल उठाई, बस दुपट्टा बेड पर पड़ा रह गया था। जैसे ही वो उसे उठाने के लिए मुड़ी, पीछे से किसी ने पहले ही दुपट्टा उठा लिया। अक्षरा ने तुरंत पलट कर देखा, डीके वो बिल्कुल उसके पीछे खड़ा था, चेहरे पर वही आराम वाली मुस्कान। उसने दुपट्टा उसकी तरफ बढ़ाया। मैडम का स्टाइल अधूरा रह जाता, अक्षरा ने चिढ़कर उसके हाथ से दुपट्टा झटक लिया। अगली बार मेरे कमरे में नॉक करके आना, समझे? उसने गुस्से में दुपट्टा गले में डाला, लेकिन डीके बस उसे देखता रहा, जैसे उसकी हर डांट उसे अच्छी लगती हो। अक्षरा ने भौंही चढ़ाई, क्या देख रहे हो? डीके हल्का हंसा, कुछ नहीं, बस सोच रहा हूँ तुम गुस्से में भी इतनी खूबसूरत कैसे लगती हो। अक्षरा ने आंखें घुमाई, चीप लाइन्स मत मारो, काम की बात करो। डीके उसके करीब आया, काम की बात यही है, आज का दिन बड़ा है और हम दोनों साथ हैं। अक्षरा ने ठंडी नजर से उसे देखा, साथ? गलत फहमी में मत रहो, मैं सिर्फ अपना हिसाब बराबर कर रही हूँ। डीके मुस्कुराया, मुझे पता है विश्वनाथ, उसने धीरे से नाम लिया। अक्षरा का चेहरा तुरंत थोड़ा सख्त हो गया। उस आदमी ने मुझे सबके सामने गलत साबित कर दिया, उसकी आवाज में दबा हुआ गुस्सा था। आज उसके चेहरे का कॉन्फिडेंस टूटना चाहिए। डीके ने ध्यान से उसे देखा, तुम अब भी उसे बहुत फील करती हो ना? अक्षरा तुरंत उसकी तरफ मुड़ी, शट अप, मैं उससे नफरत करती हूँ। डीके ने हल्का सिर टेढ़ा किया, हाँ। अक्षरा कुछ पल चुप रही, फिर उसने फाइल उठाई, चलो ड्रामा करने का टाइम नहीं है, दोनों नीचे आए। बंगले के बाहर पहले से गाड़ियां तैयार खड़ी थीं। डीके के आदमी इधर उधर घूम रहे थे, पूरी तैयारी साफ दिख रही थी। डीके ने चलते चलते पूछा, नर्वस हो? अक्षरा ने तुरंत जवाब दिया, कभी नहीं। लेकिन सच ये था, आज उसका सामना सिर्फ टेंडर से नहीं होने वाला था, उसे फिर उसी आदमी के सामने खड़ा होना था जिसे वो हर हाल में हराना और जीतना भी चाहती थी और शायद पूरी तरह भूल भी नहीं पाई थी। उधर हवेली में मधु चुपचाप खिड़की के पास खड़ी फोन पर किसी को मैसेज कर रही थी। उसने कुछ धीरे से टाइप किया, मैसेज भेजते ही उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आई और दूर मंदिर में अब भी वही भजन चल रहा था, लेकिन हवेली के ऊपर जैसे किसी नए तूफान की आहट धीरे धीरे मंडराने लगी थी। मधु ने जल्दी से फोन छुपाया, कदमों की आहट पास आ रही थी। वो तुरंत वापस वही मासूम चेहरा बनाकर रसोई की तरफ बढ़ गई। उधर ऑफिस के बाहर गाड़ियां तैयार खड़ी थीं। विश्वनाथ नीचे आया तो पूरा स्टाफ एकदम सीधा हो गया। ब्लैक सूट में उसका वही रौबदार अंदाज साफ दिख रहा था। पीछे आर्यन और अदिति भी आ चुके थे। शामली सीढ़ियों से नीचे उतरी तो एक पल के लिए विश्वनाथ की नज़र फिर उसी पर टिक गई। अदिति तुरंत मुस्कुरा दी। पापा, अभी भी कंट्रोल नहीं होता ना? आर्यन हंस पड़ा। विश्वनाथ ने बिल्कुल शांत चेहरा बनाकर कहा, मैं अपनी पत्नी को देख रहा हूँ, कोई क्राइम नहीं कर रहा। शामली ने हल्का घूरा, सबके सामने शुरू मत हो जाइए। तभी बाहर से एक गाड़ी ऑफिस के गेट पर आकर रुकी। सबकी नजर उधर गई। गाड़ी से विश्वनाथ के कजन ब्रदर्स उतरे और उनके पीछे डीके, साथ में अक्षरा। माहौल की गर्माहट जैसे एक पल में ठंडी पड़ गई। आर्यन का चेहरा तुरंत सहत हो गया। अदिति भी समझ गई, ये लोग जानबूझकर यहाँ आए थे। डीके ने हल्की मुस्कान के साथ चश्मा उतारा। होप हम लेट नहीं हुए। विश्वनाथ बस शांत खड़ा रहा। उसके चेहरे पर ना गुस्सा था ना हैरानी, सिर्फ वही खतरनाक कॉन्फिडेंस। उसने धीरे से कहा, नहीं, असल खेल तो अब शुरू होगा।